जुलाई 2021 की प्रहरी दुर्ग अध्ययन लेख 26। इस लेख का अध्ययन 30 अगस्त से 5 सितंबर के दौरान किया जाएगा। विषय सच्चाई सिखाइए और चेला बनाइए। ये लेख फिलिपियों 2:13 पर आधारित है, जहां लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करता है और उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। गीत 64। कटनी में खुशी से हिस्सा लें। लेख की एक झलक, यहोवा ने हमें प्रचार करने का ही नहीं बल्कि लोगों को सिखाने का काम भी दिया है, ताकि वो यीशु के चेले बन सके। इस लेख में हम जानेंगे कि हम ये काम क्यों करते हैं, चेला बनाने के काम में कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। पैराग्राफ 1, सवाल, आप किस बात के लिए यहोवा का एहसान मानते हैं? आप यहोवा के साक्षी कैसे बने? शायद आपने अपने माता पिता से, साथ काम करने वाले से या साथ पढ़ने वाले से सच्चाई के बारे में सुना हो, या फिर किसी साक्षी ने आपके घर आकर बाइबल से खुशखबरी बताई हो। जब आपने अध्ययन करना शुरू किया तो किसी ने आपको सिखाने में बहुत मेहनत की और अपना समय दिया। अध्ययन से आपने सीखा कि यहोवा आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करने लगे। यहोवा ने आपको अपनी तरफ खींचा। आज आप एक साक्षी हैं और आपके पास हमेशा जीने की आशा है। आप इस बात का एहसान मानते हैं कि यहोवा ने किसी के जरिए आप तक सच्चाई पहुंचाई और आपको अपना सेवक माना। पैराग्राफ 2, सवाल, इस लेख में क्या बताया जाएगा? हम सच्चाई के बारे में जान गए हैं, इसलिए अब हमारी बारी है कि हम दूसरों को सच्चाई बताएं। हो सकता है कि हमें घर घर प्रचार करना आसान लगता हो, लेकिन किसी के साथ बाइबल अध्ययन शुरू करना या उसे चलाना मुश्किल लगता हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस लेख में कुछ सुझाव दिए गए हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। इसमें बताया गया है कि हम चेला बनाने का काम क्यों करते हैं और अगर हमें अध्ययन चलाने में मुश्किल होती है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेला बनाने के लिए प्रचार करना काफी नहीं है, लोगों को सिखाना भी जरूरी है। यीशु ने प्रचार करने और सिखाने की आज्ञा दी। पैराग्राफ 3, सवाल, हम प्रचार काम क्यों करते हैं? जब यीशु ने अपने शिष्यों को चेला बनाने का काम सौंपा तो उसने कहा कि उन्हें परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करना है और ये भी बताया कि कैसे करना है। उदाहरण के लिए, अगर लोग उनकी नहीं सुनते तो उन्हें क्या करना चाहिए और अगर सुनते हैं तो क्या करना चाहिए। यीशु ने यह भी कहा कि सब राष्ट्रों को गवाही दी जाएगी, मत्ती 24:14। इससे पता चलता है कि प्रचार काम दुनिया के कोने कोने तक किया जाएगा। लोग उनकी सुने या ना सुने, फिर भी उसके चेलों को परमेश्वर के राज के बारे में गवाही देनी थी और ये भी बताना था कि ये राज क्या क्या करेगा। पैराग्राफ 4, सवाल, जैसा मत्ती 28:18-20 में लिखा है, हमें प्रचार करने के अलावा और क्या करना चाहिए? यीशु ने अपने चेलों को प्रचार करने के अलावा लोगों को सिखाने के लिए भी कहा था। कुछ लोग कहते हैं कि चेला बनाने का काम सिर्फ पहली सदी के मसीहों को करना था, पर ऐसा नहीं है। ये सच है कि यीशु ने चेला बनाने का काम अपने 500 चेलों को सौंपा था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि ये काम दुनिया की व्यवस्था के आखिरी वक्त तक चलेगा, यानी हमारे समय तक। मत्ती 28:18-20 में लिखा है, यीशु उनके पास आया और उसने कहा, स्वर्ग में और धरती पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब राष्ट्रों के लोगों को मेरा चेला बनना सिखाओ और उन्हें पिता, बेटे और पवित्र शक्ति के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सारी बातें मानना सिखाओ जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और देखो, मैं दुनिया की व्यवस्था के आखिरी वक्त तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके अलावा यीशु ने प्रेषित यूहन्ना पर भी जाहिर किया कि उसके सभी चेले लोगों को यहोवा के बारे में सिखाएंगे। पैराग्राफ 5, सवाल, पौलुस ने कौन सी मिसाल देकर समझाया कि प्रचार करना और सिखाना दोनों जरूरी हैं? पहला कुरिन्थियों 3:6-9। प्रेषित पौलुस ने चेला बनाने के काम की तुलना खेतीबाड़ी से की। उसने कुरिन्थ के मसीहों से कहा, मैंने लगाया और अपोलुस ने पानी देकर सींचा। तुम परमेश्वर का खेत हो जिसमें खेती की जा रही है। पहला कुरिन्थियों 3:6-9 में लिखा है, मैंने लगाया, अपोलुस ने पानी देकर सींचा, लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाता रहा। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना ही पानी देने वाला कुछ है, मगर परमेश्वर सब कुछ है जो इसे बढ़ाता है। जो पौधा लगाता है और पानी देता है, वो दोनों एकता में है, मगर हर कोई अपनी मेहनत का इनाम पाएगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर का खेत हो जिसमें खेती की जा रही है और परमेश्वर की इमारत हो। इससे पता चलता है कि सिर्फ बीज बोना काफी नहीं है, पानी देना भी जरूरी है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम बीज बोते हैं, और जब लोगों को सिखाते हैं तो हम पानी देते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यहोवा ही बीज को बढ़ाता है, यानी वही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पैराग्राफ 6, सवाल, जब हम लोगों को सिखाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हम सब ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो हमेशा की जिंदगी पाने के लायक अच्छा मन रखते हैं। प्रेषितों 13:48। हम चाहते हैं कि ये लोग यीशु के चेले बने। इसके लिए हमें उनकी मदद करनी होगी कि वे बाइबल से सीखी बातों को पहला समझें, दूसरा उन्हें माने, और तीसरा उनके मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। ये सच है कि जब कोई विद्यार्थी सभाओं में आने लगता है तो सभी भाई बहन उसका स्वागत करते हैं और उसके साथ प्यार से पेश आते हैं, लेकिन शायद अध्ययन चलाने वाले भाई या बहन को उसे वक्त देना पड़े और मेहनत करनी पड़े ताकि वो ऐसी आदतें छोड़ सके जो उसमें गहराई तक समाई हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5। शायद एक विद्यार्थी को बदलाव करने में और बपतिस्मा लेने में कई महीने लग जाएं, लेकिन उसकी मदद करने में हम जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। प्यार होगा तो लोगों को सिखाएंगे। पैराग्राफ 7, सवाल, हम लोगों को क्यों प्रचार करते हैं और सिखाते हैं? हमें यहोवा से प्यार है, इसलिए हम उसकी आज्ञा मानते हैं और लोगों को प्रचार करते और सिखाते हैं। जरा अपने बारे में सोचिए, आपको यहोवा से प्यार था, इसी वजह से आपने प्रचार काम शुरू किया। आपके लिए पहली बार प्रचार में जाना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आप जानते थे कि ये काम यीशु ने दिया है, इसलिए आपने उसकी आज्ञा मानी और आज आप आसानी से प्रचार कर पाते हैं। पर जब बाइबल अध्ययन चलाने की बात आती है तो शायद आपको घबराहट होने लगे, लेकिन अगर आप में अध्ययन चलाने की इच्छा है तो यहोवा से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी घबराहट दूर करेगा और आपको बाइबल अध्ययन शुरू करने की हिम्मत देगा। पैराग्राफ 8, सवाल, जैसा मरकुस 6:34 में बताया गया है, हम और किस वजह से लोगों को सिखाते हैं? हम एक और वजह से लोगों को प्रचार करते और सिखाते हैं। हमें लोगों से प्यार है, इसी वजह से हम उन्हें सच्चाई सिखाते हैं। एक बार यीशु और उसके चेले प्रचार करके बहुत थक गए थे। वे आराम करना चाहते थे, लेकिन एक भीड़ उनका पीछा करने लगी। उन पर तरस खाकर यीशु उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मरकुस 6:34 में लिखा है, जब यीशु नाव से उतरा तो उसने लोगों की एक भीड़ देखी और उन्हें देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वो ऐसी भीड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु ने उनकी हालत समझी। उसने देखा कि वो कितनी तकलीफ में हैं, इसी वजह से उसने थके होने के बावजूद उन्हें सिखाया। आज लोगों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। दिखने में वो बहुत खुश नजर आए, लेकिन वो भी तकलीफ में है। वो ऐसी भेड़ों की तरह है जो बिना चरवाहे के यहां वहां भटक रही है। पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनके पास कोई आशा नहीं है और वो बिना परमेश्वर के हैं। वो उस रास्ते पर है जो विनाश की तरफ ले जाता है। मत्ती 7:13। जब हम लोगों के हालात समझेंगे तो हमारे दिल में उनके लिए प्यार और करुणा उमड़ने लगेगी। ये बात हमें उभारेगी कि हम उनके साथ बाइबल अध्ययन शुरू करें। पैराग्राफ 9। सवाल, जैसा फिलिपियों 2:13 में लिखा है, यहोवा क्या कर सकता है? शायद आप बाइबल अध्ययन शुरू करने से हिचकिचाते हो। आपको लगता हो कि बाइबल विद्यार्थी को बहुत समय देना पड़ेगा और अध्ययन की तैयारी करने में भी वक्त देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहोवा को अपने दिल की बात बताइए। उससे कहिए कि वो आप में ऐसी इच्छा पैदा करे ताकि आप किसी का बाइबल अध्ययन चला सके। फिलिपियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें मजबूत करता है और तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करता है और उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। प्रेषित यूहन्ना ने बताया कि जो प्रार्थनाएं यहोवा की मर्जी के मुताबिक होती हैं, उन्हें वो जरूर सुनता है। यहोवा आपकी भी प्रार्थनाएं सुनेगा और आप में लोगों को सिखाने की इच्छा पैदा करेगा। दूसरी मुश्किलें कैसे पार करें? पैराग्राफ 10 और 11। सवाल, कुछ भाई बहन बाइबल अध्ययन कराने से क्यों पीछे हटते हैं? हम जानते हैं कि लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। आइए देखें कि ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जो हमें लोगों को सिखाने से रोक सकती हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। शायद हम उतना ना कर पाए जितना हम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ प्रचारक बुजुर्ग हैं या बीमार रहते हैं। क्या आपके हालात भी ऐसे हैं? अगर हाँ, तो सोचिए कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने क्या क्या बातें सीखी। हमने घर बैठे बैठे फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए अध्ययन चलाना सीखा। इन उपकरणों के जरिए अध्ययन चलाने का एक फायदा ये है कि आप कभी भी अध्ययन चला सकते हैं। जैसे कुछ लोग दिन के वक्त समय नहीं दे पाते, लेकिन उनके पास सुबह सुबह या देर रात को समय होता है। क्या आप उस वक्त उनका अध्ययन चला सकते हैं? यीशु निकुदेमुस को रात को सिखाता था, क्योंकि वो उसी वक्त यीशु के पास आता था। पैराग्राफ 12। सवाल, कौन सी 3 बातों से हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम बाइबल अध्ययन चला सकते हैं? शायद हमें लगे कि हम बाइबल अध्ययन नहीं चला पाएंगे। हमें लगता होगा कि किसी का बाइबल अध्ययन चलाने से पहले हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए या हमें अच्छा हुनर होना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो 3 बातें आपकी हिम्मत बढ़ा सकती हैं। पहली, यहोवा को आप पर भरोसा है। वो जानता है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं। दूसरी, यीशु ने आपको ये काम सौंपा है, जिसे स्वर्ग में और धरती पर सारा अधिकार दिया गया है, उसे भी आप पर भरोसा है। मत्ती 28:18। और तीसरी, आप यहोवा और दूसरे भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। यीशु ने भी यहोवा की मदद ली थी। वो वही बोलता था जो उसके पिता ने उसे सिखाया था। आप भी यहोवा की मदद ले सकते हैं। आप समूह निगरान, किसी पायनियर या अनुभवी प्रचारक की मदद से भी अध्ययन शुरू कर सकते हैं। आप उनके बाइबल अध्ययन पर भी जा सकते हैं। उनसे सीखकर आपकी हिम्मत बढ़ेगी। पैराग्राफ 13। सवाल, हमें नए नए तरीके अपनाने के लिए क्यों तैयार रहना चाहिए? शायद हमें नए तरीके आजमाना या नए प्रकाशन इस्तेमाल करना मुश्किल लगे। जब से खुशी से जिए हमेशा के लिए किताब आई है, तब से काफी कुछ बदल गया है। अध्ययन की तैयारी करने का और अध्ययन चलाने का तरीका भी बदल गया है। हम अध्ययन के दौरान कम पैराग्राफ पढ़ते हैं और उस विषय के बारे में विद्यार्थी के साथ बातचीत करते हैं। हम विद्यार्थी को वीडियो दिखाते हैं या JW लाइब्रेरी ऐप और हमारी वेबसाइट में दिए प्रकाशनों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है नए तरीके अपनाना हमारे लिए आसान ना हो, क्योंकि इंसान वही करना पसंद करता है जो वो हमेशा से करता आया है। अगर ऐसा है तो हम किसी से बात कर सकते हैं। यहोवा और भाई बहनों की मदद से हम नए नए तरीके अपनाना सीख सकते हैं। फिर हमें अध्ययन चलाना अच्छा लगेगा। एक पायनियर भाई कहता है कि जब अध्ययन चलाते वक्त विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को मजा आता है। पैराग्राफ 14। सवाल क, जब बाइबल अध्ययन मिलना मुश्किल होता है तो हमें उम्मीद क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? सवाल ख, पहला कुरिन्थियों 3:6-7 से हमें क्या तसल्ली मिलती है? हम जहां प्रचार करते हैं शायद वहां बाइबल अध्ययन मिलना मुश्किल हो, शायद लोग हमारी ना सुनते हो या वो हमारा विरोध करते हो। ऐसे में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया का माहौल इतना खराब है कि लोगों के हालात पल पल बदल रहे हैं। जो लोग आज सच्चाई में दिलचस्पी नहीं लेते, हो सकता है कि कल उनमें परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा जगे। जो लोग हमारा प्रकाशन तक नहीं लेते, शायद वो भी बाइबल अध्ययन करना शुरू कर दें। ऐसा हुआ भी है। हम जानते हैं कि यहोवा खेत का मालिक है और वो चाहता है कि हम बीज बोएं और पानी देते रहें, लेकिन बढ़ाने का काम उसका है। भले ही आज हमारे पास अध्ययन ना हो, लेकिन यहोवा हमारी मेहनत देखता है और हमें इनाम देता है। इस बात से हमें कितनी तसल्ली मिलती है। सच्चाई सिखाइए और खुशी पाइए। पैराग्राफ 15। सवाल, जब एक व्यक्ति अध्ययन करने लगता है और सीखी बातों पर चलता है तो यहोवा को कैसा लगता है? जब एक व्यक्ति सच्चाई अपनाता है और दूसरों को सच्चाई सिखाता है तो ये देखकर यहोवा को बहुत अच्छा लगता है। सन 2020 के सेवा साल का ही उदाहरण लीजिए। उस वक्त पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी, फिर भी 70,05,765 लोगों ने बाइबल अध्ययन किया और 2,41,994 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जरा सोचिए, ये देखकर यहोवा को कितनी खुशी हुई होगी। जो लोग बपतिस्मा लेकर यीशु के चेले बने, अब वो बाइबल अध्ययन चलाकर और लोगों को चेला बनाएंगे। हम भरोसा रख सकते हैं कि जब हम लोगों को सच्चाई सिखाते हैं और चेला बनाते हैं तो इससे यहोवा का दिल खुश होता है। पैराग्राफ 16। सवाल, हम क्या लक्ष्य रख सकते हैं? किसी को सच्चाई सिखाने में मेहनत लगती है, लेकिन यहोवा की मदद से हम एक व्यक्ति को यहोवा से प्यार करना सिखा सकते हैं। तो क्यों ना हम कम से कम एक बाइबल अध्ययन चलाने का लक्ष्य रखें। हम जिससे भी मिलते हैं उससे बाइबल अध्ययन के लिए पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश करेंगे, यहोवा उस पर जरूर आशीष देगा। पैराग्राफ 17। सवाल, जब हम किसी का बाइबल अध्ययन चलाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? यहोवा ने हमें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि हम लोगों को प्रचार करें और उसके बारे में सिखाएं। इस काम से हमें सच्ची खुशी मिलती है। प्रेषित पौलुस ने थिस्सलुनीके में रहने वाले कई लोगों को सच्चाई सिखाई। उनके बारे में उसने कहा, हमारे प्रभु यीशु की मौजूदगी के दौरान हमारी आशा या खुशी या हमारी जीत का ताज कौन होगा? क्या वो तुम नहीं होगे? बेशक तुम हमारी शान और हमारी खुशी हो। पहला थिस्सलुनीकियों 2:19-20। आज बहुत से मसीही ऐसा ही महसूस करते हैं। स्टेफनी और उसके पति ने कई लोगों को सच्चाई सिखाई। स्टेफनी कहती है, अपनी जिंदगी यहोवा को समर्पित करने में जब हम किसी की मदद करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। ये किसी और काम से नहीं मिल सकती। पैराग्राफ 15-17 से संबंधित तस्वीर के बारे में, बाइबल अध्ययन करने से एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। शुरू शुरू में वो यहोवा के बारे में कुछ नहीं जानता और उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। फिर साक्षी उससे मिलते हैं और वो बाइबल अध्ययन करने लगता है। कुछ समय बाद वो समर्पण करता है और बपतिस्मा लेता है। इसके बाद वो भी चेला बनाने के काम में हिस्सा लेता है। फिर जब वो सब नई दुनिया में जाते हैं तो खुशी से जिंदगी बिताते हैं। चित्र शीर्षक, जब हम किसी को प्रचार करते हैं और सच्चाई सिखाते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपका जवाब क्या होगा? लोगों को प्रचार करना और सिखाना क्यों जरूरी है? हम लोगों को क्यों सिखाते हैं? जब हमें अध्ययन चलाने में मुश्किल होती है तो हम क्या कर सकते हैं? गीत 57, सब किस्म के लोगों को सच्चाई बताइए। लेख समाप्त।